लिंगेर वर्णाश्रमादिभिः न विदन्ति जनायं मे सोऽसावित नवति च
शब्दों से लिंग ही लक्षणों से वर्णाश्रम वर्णाश्रम धर्म से संबंधित आदि भी अन्य लक्षणों से न विदन्ति नहीं समझ सके जनाः सामान्य लोग यम जिसको वै निस्संदेह सह की वह असो यही व्यक्ति था इति इस प्रकार न नहीं वा अथवा इति इस प्रकार च भी अनुवाद और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की चर्चा अनुवाद। लोग ना तो उस साधु पुरुष के कर्मों से ना शारीरिक बनावट से ना उसके शब्दों से ना उसके वर्णाश्रम धर्म के लक्षणों से यह समझ पाए कि यह वही पुरुष है जिसे वे जानते थे। तात्पर्य सह्य पर्वत की घाटी में कावेरी नदी के तट पर रहने वाले उस स्थान के निवासी यह नहीं समझ पाए कि वह साधु पुरुष वही है जिसे वे जानते थे। इसलिए कहा जाता है वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेन बुझाए। उच्च कोटि का वैष्णव इस प्रकार रहता है कि कोई यह ना समझ सके कि वह कैसा है। वैष्णव के भूतकाल के भी समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज ने इस संत पुरुष की विगत जीवन के विषय में पूछताछ किए बिना तुरंत ही नमस्कार किया। ज्ञात मिरांदस्य ज्ञानांजन शलाक्य शिक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप सदामह्यं ददाति स्वपदानुगतं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तराधाकान्त नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौरङ्गिराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते जे प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं इस अध्याय में यतिर लक्षणम यति सन्यास धर्म का लक्षणों का वर्णन इधर हो रहा है कि सन्यास धर्म का लक्षणों का वर्णन करते हुए कल के श्लोक में हमने सुना ये संवाद युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बीच में हो रहा है। तो नारद मुनि एक भूतकाल में घटी हुई घटना उसको वर्णन करते हैं। ये पुराणों की शैली होता है कि दो लोगों के बीच में संवाद रहता है। एक व्यक्ति प्रश्न पूछते हैं तो उसे जवाब देते हैं। वो जवाब देते हुए क्या कहते हैं कि इस प्रश्न का जवाब इस प्रकार है कि इसी प्रकार का प्रश्न पहले एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा था, तो उसने क्या जवाब दिया वो बताएंगे। वो जवाब देते हुए वो उनकी जो प्रवचन में और एक भूतकाल में घटी हुई घटना को प्रस्तुत करेंगे। तो ये एक स्टोरी के अंदर और एक स्टोरी और एक स्टोरी के अंदर और एक स्टोरी उस स्टोरी के अंदर और एक स्टोरी ये अलग अलग ट्रैक्स में चलता रहता है। पुराणों की जो स्टोरीज है ये पुराणों की शैली है, इससे अस्तित्व में बहुत सुंदर ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ने कुछ कह दिया बाद में उसका जवाब मिल गया, ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति जवाब पूछते हैं और दूसरे जो वक्ता है वो कहीं और का कुछ घटना बता दे, उस घटना के अंदर कहीं और का घटना बताएंगे। वैसे अनेकों अनेकों स्टोरी के अंदर स्टोरी स्टोरी के अंदर स्टोरी होता रहता है। तो ये बचपन में इस प्रकार हमको ये स्टोरी सिखाई जाती है। पंचतंत्र करके एक कहानी है, एक बुक है, आपने आप जानते होंगे। इसमें स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ता है स्टोरी के अंदर स्टोरी स्टोरी के अंदर स्टोरी ऐसा है। तभी हम लोग इधर प्रहलाद महाराज का अचानक स्टोरी आ गया, एक प्रसंग आ गया। तो वैसे प्रवचन हो रहा है नारद मुनि के द्वारा, नारद मुनि स्वयं अपने शिष्य का एक घटना बताते हैं। तो प्रहलाद महाराज की पूरा अपनी राज सिंहासन में बैठने के बाद बहुत सालों तक उन्होंने 33,000 वर्ष लगता है उन्होंने राज पदवी को स्वीकार किया। उस समय उन्होंने क्या किया, संतों के लक्षणों को मैं जानना चाहता हूँ, संत कौन होते हैं, साधु का लक्षण को जानना चाहता हूँ। वैसे मैंने सुना है लेकिन प्रत्यक्ष रूप में साधु के पास जाके उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, उनके जीवन के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा विचार करते हुए प्रहलाद महाराज विरण करने निकल पड़े। ये आज का जो श्लोक है 14वां श्लोक है, इसके पहले के जो 2 श्लोक है उसके तात्पर्य नहीं है, तो उसका अनुवाद थोड़ा सा जानने के लिए प्रयास करेंगे। जय श्री राधा गिरिधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में। तो प्रहलाद महाराज निकल पड़े कि मैं संतों का लक्षण को जानना चाहता हूँ। निकलते निकलते एक जगह पहुंचे, कावेर्याम सह सा नुनी, ये 12वां श्लोक में आता है। कावेर्याम, कावेरी नदी के तट में पहुंचे। ये कावेरी नदी कहाँ बह रहा है कि सहिया, सहयाद्री माउंटेन, हमने सुना होगा ज्योग्राफी में सहयाद्री, सहयाद्री पर्वत। ये सहयाद्री पर्वत ये नासिक वगैरह का शुरू होता है और नीचे की ओर जाता है, इसको वेस्टर्न घाट का ऊपरी के भाग कहा जाता है। ये रक्तगिरी वगैरह नीचे और जाते ये कावेरी जहाँ से शुरू होता है उधर तक, उधर सहयाद्री माउंटेन्स मार्क होता है। तो ये वेस्टर्न घाट का पैरल रेंज माना जाता है। तो ये ज्योग्राफी में आप जानते होंगे ये शुरुआत होता है इधर से, नासिक से शुरू होता है सहयाद्री रेंज। आप इधर से जाएंगे बम्बई में कौन सा कल्याण के और आगे जाएंगे, उधर से ये सहयाद्री माउंटेन्स का रेंज शुरू होता है, स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो सही सहयाद्री माउंटेन्स के रेंज में पहुंचे, कहाँ, कावेरी तट में पहुंचे। उधर जब पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, एक संत पुरुष को देखा, साधु पुरुष को देखा जो शयनम सोए हुए हैं। वो कहाँ सोए हुए हैं, कहाँ लेटे हुए हैं, धरा ऊपर से, धरा ऊपर से। तो ये पृथ्वी को धरा कहा जाता है, जो धारण करती है इसको पृथ्वी, पृथ्वी जो धारण करती है जिसको धरा बनते, वो पृथ्वी के बस सोए थे, वो ना चटाई बिछाए थे ना कुछ बिछाए थे, कुछ नहीं बिछाए थे। ये हम लोग सोने के लिए जाते क्या करते हैं, जमीन के ऊपर थोड़े ना सोएगा, कम से कम पलंग तो होना चाहिए, कुछ नहीं था उनके पास, क्या था, ऐसे जमीन के ऊपर सोए हुए बस थे। और रजह वलई ही, और उनके पूरा शरीर भर में क्या था, केवल धूल ही धूल था, ऐसा नहीं था कि वो नहाए भी थे, नहाए भी नहीं थे, ऐसे शरीर में पूरा धूल ही था। सर्वदेशी ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऐसा नहीं कि कुछ कुछ शरीर के अंग जो है वो साफ था या वो कुछ कपड़े पहने थे, ऐसा कुछ नहीं था उनके शरीर के ऊपर, सारे प्रत्येक शरीर के हर एक अंग का जो है कपड़ा नहीं था बल्कि वो धूल से भरा हुआ था। सर्वदेशी ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी निगूढ़ और अमला पापलेट टेसम, उनके पास बहुत निगूढ़, निगूढ़ का अर्थ है बहुत ग्रेव, यानी कि उनके मन में क्या चल रहा है वो मालूम नहीं पड़ रहा था, वह ऐसे लेटे हुए थे। मान लो कोई नया व्यक्ति उनके पास आता है तुरंत कुछ तो रिएक्शन होना चाहिए बॉडी में, कुछ नहीं, ऐसे ही ऐसे दीर्घ दृष्टि से ऐसे देख रहे थे, और उनके शरीर में उनके मन में जरा सा भी कोई मल, यानी मन में कोई मल नहीं था, उनके शरीर से बहुत सुंदर तेज उत्पन्न हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये कोई अन्य लोक से है, इस लोक के है नहीं। इस प्रकार लोक का तत्व, द नेचर ऑफ लिविंग, स्पेशली दोज हु आर एडवांस इन क्रिस्टल कॉन्शियसनेस, तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार चलते चलते उनको देखा कि ये लोक तत्व विचरण, लोक तत्व प्रहलाद महाराज सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड वंस वेंट आउट टूरिंग द यूनिवर्स विद द सन्स कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट जस्ट टू स्टडी द नेचर ऑफ सेंटी पर्सन। ये जो प्रहलाद महाराज के साधु पुरुष को देखे वो क्यों इधर गए थे, लोक तत्व यानी ये जो संत पुरुष होते हैं उनका तत्व क्या होता है उनको जानने के लिए वो निकल पड़े, तो उनसे मुलाकात हुआ। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज भगवत प्रिय, तो ये दो श्लोकों में, पहले के दो श्लोक यानी 12 और 13 श्लोक में प्रहलाद महाराज जो भगवान के शुद्ध भक्त है, तो भगवत प्रिय भगवान के प्रिय है, वो निकल पड़े संतों का तत्व को जानने के लिए, ये साधु पुरुष के लक्षण क्या होते हैं उनको जानने के लिए निकल पड़े। तो कावेरी नदी के तट में पहुंचे तो उन्होंने एक महापुरुष का दर्शन किया जो जमीन के ऊपर लेटे हुए थे और उनके शरीर भर पूरा कोई कपड़ा नहीं था बल्कि पूरा रजों से या रज से धूल से उभरा हुआ शरीर था। तो ये दो श्लोक का अनुवाद है, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे ये दो श्लोकों के ऊपर, यानी इस श्लोक के पहले वाला श्लोक। संतों का स्वभाव को जानना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जैसे हम जिस व्यक्ति की महत्ता को उनके गुणों को जानेंगे उस व्यक्ति जैसा बनने की स्वभाव या प्रवृत्ति हमारे अंदर जागृत होता है। ये स्वभाव है कि हम जैसे जिस व्यक्ति को देखते हैं उनके अंदर सुंदर लक्षणों को देखते हैं उनके गुणों को जानते हैं, वो गुणों को जानने के द्वारा मेरे अंदर भी और हमारे अंदर भी ऐसी प्रेरणा प्राप्त होती है कि मैं भी वैसा बनूं। तो जो भक्त या महान संत होते हैं उनका लक्षणों को जानने के लिए प्रयास करना हमेशा इस प्रकार का प्रयास होना चाहिए, इट शुड बी देयर। इधर प्रहलाद जिस महान पुरुष से जिनका मुलाकात हुआ उनका नाम तो जानते हम दत्तात्रेय है, कल हमने उसका परिचय प्राप्त किया किस प्रकार दत्तात्रेय जिनको अवधूत करके कहा गया, 11वां स्कंद में ये अवधूत ब्राह्मण जिन्होंने ये 24 गुरुओं को स्वीकार किया उसके बारे में हमने सुना। ये दत्तात्रेय कौन है उनका परिचय थोड़ा देने के लिए प्रयास करेंगे। क्विज़ ही दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शिव जी का तीनों का मिलन अवतार माना जाता है। इस दोनों आंसर दत्तात्रेय इनको भगवान दत्तात्रेय कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश के सम्मिलित रूप है। इनका जन्म इस प्रकार है कि अनसुया करके एक महान पतिव्रता थी। इनकी पतिव्रता गर्व इतना सुंदर था कि सारे देवता लोग ईर्ष्या करने लगे और ये टेस्ट करना चाहते थे कि ये सारे जितने भी ये इनका पतिव्रता धर्म कितना अच्छा है। तो एक बार सारे देवतालों ने क्या किया, वो ऋषि मुनियों का रूप धारण किए और अनसुया के पास आए। उन्होंने कहा कि हमको भोजन खिलाइए। अनसुया ने कहा कि ठीक है मैं खिलाऊंगी, आप बैठिए। तो उन्होंने एक शर्त रखा कि आप जो है एक स्त्री हो, तो हम तो साधु पुरुष है, आपकी हाथों में हम ग्रहण नहीं करेंगे। ये बात यह है कि अगर आप पूरा नग्न होके हमको परोसेंगे तो हम खाएंगे। अनुसूय समझ गई इन लोगों का चाल। तो उन्होंने क्या किया, अपनी तपशक्ति के द्वारा सारे जितने भी देवता उनको सारे छोटे छोटे बच्चे बना दिया। बच्चे बना के उनको अच्छी तरह से उन्हें पिलाया, दूध पिलाया, स्तन पान कराया और सारे देवता लोग गए ब्रह्मा विष्णु महेश के पास ताकि बोले हमारे पति देव छोटे बच्चे के रूप में अभी क्या करे। अनुसूया हमको बच्चा बना के उधर सब लोग रो रहे हैं जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे शिशु। इस प्रकार तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पहुंचे अनुसूया के पास। तो उन्होंने कहा कि इनको छोड़ दो, इनकी वो स्वाभाविक स्थिति में आने दो। उसने कहा कि मैं करूंगी, आप तीनों एक साथ प्रकट हुए तो मैं इन बच्चों को मुक्त कर दूंगी, लेकिन आपको बच्चा बनना पड़ेगा मेरा। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का मिलित रूप है। दत्तात्रेय के विषय में बहुत सारा चीज कहा जा सकता है लेकिन आज का जो श्लोक है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे और आगे आने वाले जो श्लोकों में कभी दत्तात्रेय के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। संक्षिप्त में ये बात है, दत्तात्रेय ये आत्म तत्व का वर्णन करने के लिए उनका प्राकट्य हुआ। जैसे भगवान अनेकों अवतार लेते हैं कि आत्म तत्व का प्रचार करने के लिए भगवान दत्तात्रेय का वर्णन हुआ है, लेकिन भगवत तत्व का विषय में उन्होंने वर्णन ज्यादा नहीं किया, किया भी है तो थोड़ा सा निराकार वर्णन किया। इसलिए दत्तात्रेय की शिक्षाएं जो है शुद्ध वैष्णव शिक्षा के रूप में माना नहीं जाता है। इसलिए दत्तात्रेय भगवान का ही अवतार होने पर भी हम दत्तात्रेय का विग्रह को पूजा नहीं करते। जैसे बुद्ध अवतार भगवान का ही अवतार है लेकिन फिर भी वेदों के वास्तविक सिद्धांत को उन्होंने पेश नहीं किया, इसलिए भले ही भगवान के अवतार है हम वैष्णव बौद्ध बुद्ध अवतार विग्रह को रख के पूजा नहीं करेंगे। जैसे मत्स्य कूर्मा वराह नरसिम्हा वामना इन सब अवतारों को पूजा करते हैं लेकिन ये बुद्ध अवतार का हम पूजा नहीं करेंगे। उनका चरित्र का गुणगान करेंगे लेकिन उनका विग्रह को रख के पूजा करना हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान होने पर भी उन्होंने उस अवतार में वेदों की सही सिद्धांत को पेश नहीं किया या वेदों को तिरस्कार किया, इसके वजह से दत्तात्रेय का पूजा नहीं किया जाता है। जो मंदिर में जाके देखेंगे उधर दत्तात्रेय का डारा मात्र है, उनके साथ में चार कुत्ते खड़े रहते हैं। ये चार कुत्ते जो है ये वेदों के स्वरूप है ये मानना चाहिए। और दत्तात्रेय के विषय में अनेकों अनेकों लीलाएं हैं, जैसे सो मेनी पास्ते हैं सबोर्ट दत्तात्रेय। उनका सबसे महत्वपूर्ण एक ग्रंथ की रचना की है उन्होंने, उनका नाम है दत्त गीता। इसके अंदर विस्तृत तरीके से अवधूत का क्या लक्षण होते हैं उन्होंने वर्णन किया है। अवधूत होते हैं, अवधूत का अर्थ है जिनकी व्यवहार को हम अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते उस व्यक्ति को अवधूत कहा जाता है। यह अवधूत शब्द का विश्लेषण इस प्रकार है कि जानने से पहले हमारे जो संप्रदाय में नित्यानंद प्रभु है उनको अवधूत कहा जाता है, अवधूत नित्यानंद, क्योंकि उनके व्यवहार अति विचित्र होता है। वो ये हम कह नहीं सकते कैसा व्यक्ति है, कब क्या करेंगे कब क्या बोलेंगे, कोई उसका हिसाब किताब नहीं रहता। और पूरा अपनी मन के जैसे विचार होते हैं उसके अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। एक तरीके से बताया जाए एक पागल व्यक्ति में और अवधूत में अंतर नहीं है, व्यवहार में खाली अंतर यह है अवधूत जो है वो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति होते हैं और पागल है वो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति चीज को प्राप्त नहीं किया, लेकिन व्यवहार को देखेंगे एकदम बिल्कुल पागल की जैसा। उनको लोग जो है पागल ही कहते हैं, दे कॉल दैट पर्सन मैड होना। अगर कोई जमीन के ऊपर सोया हुआ है तो क्या बोलेंगे पागल है, क्या है चटाई डाल के सो जाओ। अगर कोई सरसरी पर धूल है कभी नहाता नहीं है तो उसको क्या बताएंगे, पागल ही कहेंगे। तो वैसे ही ये अवधूत का अर्थ, ये शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। अवधूत शब्द का आंख अर्थ है जो अत्यंत तल्लीन है, किसमें कृष्ण भक्ति में इतना तल्लीन है या आत्म साक्षात्कार में इतना तल्लीन हो, आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त किए उनको आप शब्द से सूचित किया जाता है। वह शब्द के द्वारा ये सूचित किया जाता है कि वो ये तीनों ताप होते हैं, ये आध्यात्मिक अध्यात्मिक अधिभौतिक और अधिदैविक, ये तीन प्रकार के जो ताप है ये इससे मुक्त रहते हैं। वो कुछ भी गड़बड़ हो, कुछ भी भयानक स्थिति भी क्यों ना हो, वो उससे कोई विचलित नहीं होते। उनको संसार से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है, चाहे बड़ा सा प्रलय आया हो या कोई व्यक्ति उनको निंदा भी करता हो, चाहे कोई अपने मन और ये शरीर के द्वारा कुछ भी दुख आता हो, रोग आता हो, उनको कुछ जरा सा ही फर्क नहीं पड़ता है। He is not at all bothered about it। और धूप अर्थ है जो बाहर दृष्टिकोण से धूल लगा हुआ है, गंदगी है, लेकिन उनका मन जो है एकदम बिल्कुल साफ है, पूर्ण तरीके से निर्मल है। ताक अर्थ है जो व्यक्ति हमेशा वो जो बहिरंगी परिस्थिति है उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं रहता। तो ये चार शब्दों के द्वारा अवधूत के लक्षणों को हम बता सकते हैं। दूसरी बात ये है जब ये अवधूत अपने अपने अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं उनको उनके पास जाके अगर आप पूछेंगे कभी जवाब देते हैं कभी जवाब नहीं भी देते हैं। अरे प्रहलाद महाराज इस अवधूत के पास गए, जाके उन्होंने पूछा, अस्तित्व में प्रहलाद महाराज ने पूछा, किन से पूछा था, आजू बाजू जितने भी लोग थे उधर उन लोगों से पूछा। उन्होंने क्या पूछा कि यह व्यक्ति कौन है, ये जो इधर पड़े हुए सोए हुए है ये कौन है। तब आजू बाजू जितने भी लोग थे लोगों ने कहा कि हमको मालूम नहीं ये कौन है। तो ये जो आज का जो श्लोक है इस बात को सूचित किया जा रहा है कि अवधूत को कोई व्यक्ति पहचान नहीं सकता, ना कर्मणा ना कार्यों से, ना आकृति भी, ना उनके शारीरिक वेशभूषा से, शरीर का आकार से, ना उनकी वाणी से, ना उनका वर्णाश्रम के धर्म के अनुसार। तो ये श्लोक में चार चीजें बताए गया है। ये चार चीजें जो है एक व्यक्ति का पहचान होता है, जैसे कार्यों के द्वारा व्यक्ति का पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है फलाना ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, या ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है इस प्रकार का कार्य करता है, ये बहुत सुंदर गाता है, ये गायक है। तो ये कार्यों के द्वारा व्यक्ति का पहचान होता है। ये अवधूत का पहचान ना कार्यों के द्वारा हो सकता है ना आकृति भी। आकृति भी करते हैं उनकी आकार, ये सुंदर दिखता है, इनका शरीर जो है उनका रंग जो है गोरा है, ये जो है ये नाटा है, ये लंबा है। तो ऐसे आकृति के द्वारा ही पहचान होता है। और तीसरा है उनका वाचा, ये बहुत अच्छा बात करता है, ये जो है उनके हमेशा बात जो है बराबर नहीं रहता है, ये कुछ भी बात करते हैं, या उनकी ये भाषा है, ये भाषा बोलते हैं। तो इस प्रकार वाचा के द्वारा व्यक्ति का पहचान होता है। ये वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ब्राह्मण है, गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, इस प्रकार का व्यक्ति का पहचान होता है। लेकिन ये अवधूत इस प्रकार है कि ये चारों लक्षणों के द्वारा, लिंग ही मतलब लक्षणों के द्वारा, उस व्यक्ति का कोई नहीं पहचान है। मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ में रहता हो, पूरा आपके शहर में जीता हो, लेकिन कुछ समय के बाद अवधूत बनने के बाद आपके शहर के वासी, आपके जो गांव वासी, वो भी नहीं पहचानते कि यही व्यक्ति है। इतना हद तक कि ये व्यक्ति का ये जो चारों चीज है वो हमेशा बदली होता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। इसलिए मान लो कि ये व्यक्ति अवधूत है, मान ये व्यक्ति पहचान लिया, हाँ ये अवधूत आया है, वो दो तीन महीने के बाद देखेंगे उसका जो कार्य है, उसका जो सब जितने भी स्वरूप है वो सब बदली हुआ रहता है, वो कुछ और दिखाई पड़ता है, हमेशा उनका व्यवहार में बदली रहता है। तो सबसे पहला कर्म, तुम्हारे जो नित्यानंद प्रभु है उनके बारे में चैतन्य भागवत में वर्णन है कि किस प्रकार अवधूत के लक्षणों को उन्होंने प्रकाशित किया। वो कुछ भी करते थे, कभी कभी वो गंगा में कूद जाते थे, कूद के मगरमच्छों के साथ खेलते थे। तो चैतन्य महाप्रभु बोला थे चलो आओ, तो तुरंत आके चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, नित्यानंद प्रभु को उन्होंने व्यासासन पर बैठा के रात पूजा शुरू कर दिया। तो अभी इस प्रकार का बालक जो है स्वरूप है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या स्वीकार किया, नित्यानंद प्रभु गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बारे में शिवाज ठाकुर के बीच में संबंध हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु ने जाके शिवाज ठाकुर को कहा तुम पता नहीं किसको अपने घर में रखे हो, ना उसका जात मालूम है, ना उसके कर्म मालूम, उनका माता पिता क्या कौन है कुछ भी नहीं मालूम है, फिर भी तुम इस नित्यानंद प्रभु क्यों रखे हो अपने घर में, तुम तो एक ब्राह्मण परिवार से हो, इनको भगा अपने घर से। तो नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु कहा कि अगर मैं नित्यानंद प्रभु को ये देखूंगा कि वो एक शराब खाने से बाहर निकल रहे हैं, या नित्यानंद प्रभु कभी कभी वेश्या घर में प्रवेश कर रहे हैं, ये देखते हुए भी मैं मेरा जो उनके ऊपर विश्वास है वो जरा सा भी मिलता नहीं। तो इस बात को सुन के श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शिवास तुम्हारा ये जो नित्यानंद प्रभु में जो विश्वास है उसको देख के मैं इतना खुश हूँ, मैं तुमको एक वरदान देता हूँ कि हो सकता है लक्ष्मी स्वयं घर घर में जाके भीख मांगने की अवस्था है, लेकिन तुम्हारे घर में कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि शिवाज ठाकुर का जो विश्वास है नित्यानंद प्रभु में इतना महान है कि भले ही नित्यानंद प्रभु शराब खाने में प्रवेश करते हुए देखेंगे या शराब खाने से बाहर आते हुए देखेंगे तो शक लगता है, अरे ये क्या है, शराब खाने से कौन बाहर आता है, तो ये क्या आएगा, ये तो नशा करने वाला है, वेश्या घर में जा रहा है, ये तो ये सब चीजें जो है मन में निश्चित रूप से इस प्रकार का विचार आता है, ये लगता है कुछ गड़बड़ वाला है। लेकिन अवधूत के ऊपर कभी भी शंका नहीं कर सकते, इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए, अपनी बुद्धि के द्वारा वैष्णवों का क्रिया जो है वो हम नहीं समझ सकते, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। खास करके जो अवधूत के स्तर में पहुंचे हैं उन लोगों का, उन भक्तों का जो क्रिया है, कार्य है, उनको समझना अति मुश्किल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते, क्योंकि ये अवधूत का स्तर होता ही ऐसा है, इट इज दैट ओनली। उनका कार्यकलाप कब क्या करते हैं अचानक, कभी कभी वो क्या करते हैं, वो शिवाज ठाकुर उनकी पत्नी मालनी उनके पास ऐसा फूल पड़ते हैं, खुद भर के उनके स्तनों से दूध पान करना शुरू करते हैं। उस समय नित्यानंद प्रभु का उम्र कम से कम 24 साल हुआ रहेगा, लेकिन मालनी के स्तनों से दूध पान कर रहे, ये क्या है, ये तो हमारे मन में बैठ ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है। चलिए अवधूत है, अवधूत का कोई हिसाब किताब नहीं रहता, वो इस प्रकार ऐसा आचरण करना है, इस प्रकार बैठेंगे, इस समय ये इधर रहेंगे, कभी कभी वो अनेकों महीने तक कुछ खाएंगे नहीं और अचानक खाने बैठ जाएंगे तो इतना सारा खा जाएंगे कोई हिसाब नहीं उसका। कभी कभी इतना शौकीन से वस्त्र पहनेंगे, कभी कभी जो है वस्त्र ही नहीं पहनते, कभी कभी जो है एकदम सिद्धांत के अनेक अच्छे अच्छी बातें कहेंगे और कभी कभी जो है हमेशा कुछ लौकिक बातें कहते रहेंगे, कभी किसी का ऐसा निंदा करना शुरू कर देंगे जिनका कोई हिसाब किताब नहीं, कौन क्या, जैसे पागल का कोई हिसाब किताब नहीं रहता है इनके कार्यों का, उसी प्रकार के अवधूत का भी कोई हिसाब किताब संस्करण की उसकी आकृति भी उनका शरीर का आकार जो है हमेशा बदली हुआ रहता है, देर वी ऑलवेज चेंजिंग। कभी कभी दत्तात्रेय को गुरु मानने वाले बहुत सारे ट्राइबल्स हैं। ट्राइबल का अर्थ है कि जो आदिवासी होते हैं, कुछ ऐसे आदिवासी वर्ग है दक्षिण भारत में जो दत्तात्रेय को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि दत्तात्रेय भी उधर उनका जो आकार होता है एक ट्राइबल के रूप में आकार है। जैसे आदिवासी लोग ड्रेसिंग करते हैं ना, वैसे दत्तात्रेय का भी ऐसे ड्रेसिंग करते हैं ट्राइबल के रूप में। और उनका ऐसा कहना है कि ये हमारे भगवान है, ये आदिवासियों का भगवान है। और कुछ महाराष्ट्र में कुछ एक संप्रदाय है नाथ संप्रदाय करके, तो और भी बहुत जगह फैला हुआ है ये संप्रदाय, बहुत उन्नत ज्ञान में स्थित रहते हैं, यानी अद्वैत ज्ञान में स्थित रहते हैं। वो लोग दत्तात्रेय को स्वीकार करते हैं कि हमारे भगवान हैं, ये हमारे लीडर है। और दत्तात्रेय को ज्ञान मुद्रा में हमेशा वो पूजा करते हैं, ये हमको आध्यात्मिक ज्ञान दिए। तो एक जगह दत्तात्रेय जो है ट्राइबल का ड्रेस है, दूसरा जगह जो है वो ध्यान लगाते हुए अष्टांग योग करते हुए ज्ञान मुद्रा में वो बैठे हुए हैं। आकार भी अलग है, कहीं एक जगह उनका आकार है, कहीं एक जगह उनका आकार। ये व्यक्ति जो इस प्रकार का है, हम कभी भी उसको डेफिनेशन कर ही नहीं सकते, उनका आकार भी अलग अलग है। और तीसरी बात है वचा, उनकी वाणी। उनका जो वाणी है उसके बारे में ज्यादा उल्लेखित नहीं है, लेकिन दत्तात्रेय की शिक्षाएं खास करके जो उल्लेखित किया गया है मेन है दत्त गीता, दत्तात्रेय के द्वारा लिखा हुआ, वो भी जैसे भगवत गीता जैसा ही है, लेकिन केवल आत्म तत्व का बहुत वर्णन है उसके अंदर, विपरीत वैराग्य का वर्णन होता है ये है। और आगे वर्णाश्रम, ये वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत तो आते ही नहीं है, दे डोंट कम अंडर वर्णाश्रम धर्म एट ऑल। ये अवधूत के लक्षण है, अवधूत के लक्षण का आज तक कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाया कि ये लक्षण अवधूत के। क्यों? जो लक्षण जिसका हमेशा बदली होता रहता है, जो लक्षण कहीं शास्त्रों में कहीं किसी का वर्णन ही नहीं है, और जो अजीब सा रहता है, और एक तरीके से बताया जाए जिस प्रकार का एक पागल का व्यवहार होता है, उस प्रकार का व्यवहार जिसका है उसको अवधूत कहा जाता है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अवधूत के बारे में कभी भी जिज्ञासा करने के लिए जेल नहीं जाना चाहिए, ये उनका पूर्वाश्रम क्या था, वो कहाँ से आए, वो कहाँ से, उनका माता पिता कौन है, ये सब खोज नहीं करना चाहिए। प्रहलाद महाराज जैसे अवधूत के पास आए, आगे के श्लोकों में वर्णन है कि तुरंत उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपका माता पिता कौन है, ये सब उन्होंने बिल्कुल पूछा नहीं, वो डायरेक्टली जाके उन्होंने प्रणाम किया। ये अवधूत के पास जाने की विधि होता है। तो अभी ये अध्याय में सन्यास धर्म का वर्णन है, तो सन्यास धर्म का वर्णन है तो अवधूत का लक्षण को क्यों वर्णन किया गया है। ये सन्यास धर्म में अधिकांश जो गुण है लक्षण है वो अवधूत के लक्षणों से प्राप्त किया जाता है। अवधूत के जो कार्य होते हैं वो सन्यासियों में अधिकांश प्राय प्राप्त किया जाता है। ऐसा नहीं कि सन्यास जो है हर एक सन्यासी जो है पूर्ण तरीके से अवधूत जैसा ही जीता है, नहीं ऐसा नहीं है। अवधूत जो है ये सन्यास से परे वाला, इट इज बियॉन्ड सन्यास। सन्यास भी वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत आता है, तो सन्यासियों का धर्म जो है शास्त्र में वर्णन है, लेकिन अवधूत का धर्म कहीं वर्णन नहीं है। जो अजीब है, कहां कुछ किसी का हिसाब किताब मिलता नहीं, उनको अवधूत कहा जाता है। तो लेकिन सन्यासियों के लिए अवधूतों के बारे में थोड़ा जानना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि अवधूत के जो लक्षण होते हैं अधिकांश प्राय सन्यासी को स्वीकार करना होता है, इसलिए अवधूत का वर्णन इधर हुआ है। तो खास करके सन्यासी के पास जब हम जाते हैं तो सबसे पहला बात है उनके पूर्वाश्रम के बारे में पूछना नहीं चाहिए, ये पहले कौन थे, इनका नाम क्या है, वो सब पूछना नहीं चाहिए। सारंग भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में विचार किया, पूछा, पूछताछ किया, तो ये तो वात्सल्य के प्रेरित होते उन्होंने पूछा, वो अलग बात है, लेकिन ये पहले कौन थे, पहले क्या किया, उनके बारे में विचार कभी नहीं करना चाहिए। वी वन शुड नॉट डू दिस। सन्यासी अस्तित्व में वो उनका सोशली डेथ हो चुका है, यानी सामाजिक तरीके से उनका मृत्यु हो चुका है। मरा हुए व्यक्ति के बारे में कोई पूछताछ नहीं करता, ये किसका था, कौन किसका संबंध है, ये क्या करता था, वो कुछ नहीं पूछना चाहिए। अभी क्या है उस अवस्था के बारे में बात करो, अभी आप उनसे क्या आध्यात्मिक ज्ञान लेना है, केवल उनको ही स्वीकार करना चाहिए। इसलिए प्रहलाद महाराज जब अवधूत ब्राह्मण के पास गए, इधर अवधूत के पास गए, दत्तात्रेय के पास गए, विदाउट आस्किंग अ सिंगल पर्सन अबाउट हिज प्रीवियस लाइफ, प्रहलाद महाराज इमीडिएटली ऑफर्ड ओबिशंसीज। उन्होंने पूर्ण तरीके से उन्होंने क्या किया, केवल प्रणाम किया और जिस चीज के लिए आए वो आगे वो पूछने लगे। तो ये श्लोक में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में दो महत्वपूर्ण बातों को शिक्षा देते हैं, दो महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। एक है, एक वैष्णव को अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं समझना है उनके कार्यकलापों को, और दूसरा बात है कि एक वैष्णव या खास करके सन्यासी चौधूत जैसे हैं, उनके पूर्वाश्रम वो पहले क्या थे, हमको उनके बारे विचार नहीं करना चाहिए। अगर करने भी जाएंगे, खासकर के अवधूत जैसे होते हैं, उनके बारे में कोई कुछ बता ही नहीं पाएगा, नोबडी कैन टेल, क्योंकि वर्णन करने के लिए हमको कुछ ना कुछ हिसाब किताब होना चाहिए। हाँ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन अवधूत के बारे में कौन क्या वर्णन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। इससे कहा गया है न विदंती, तीसरे लाइन में शब्द है न विदंती, मतलब कोई नहीं जानता था। जना यम वही, जना जितने भी लोग थे उधर आजू बाजू में, वो सब न विदंती, वो लोग नहीं जानते थे। ये व्यक्ति ऐसा था, अच्छा ये व्यक्ति यही है, ऐसा करके कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। तो इन श्लोकों में या इस श्लोक में ये दो महत्वपूर्ण बातों को श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, वैष्णव क्रिया मुद्रा टिकने ना बुझाए, और दूसरा बात है कि प्रहलाद महाराज जिस प्रकार ये अवधूत ब्राह्मण के पास जाके प्रणाम करे सीधे, उसी प्रकार हमको भी जाके उनको प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए, अरे ये तो पहले नशा करता था, नहीं तो ये करता था, अरे अभी तो बन गया साधु, इस प्रकार नहीं देखना चाहिए। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है उसी बात को विचार करना चाहिए, या वर्तमान में ये कौन है उसके बारे में विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले ऐसा था इसके लिए इसलिए मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, तो ये विचार जो है नहीं करना चाहिए। पांच अपने साधु, अंग्रेजी में कहावत है एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर एंड एवरी सेंट हैज ए पास्ट। क्या अर्थ यह है, मान लो कि अभी कोई पाप कर रहा है, इसका कुछ ना कुछ भविष्य है, कभी ना कभी वो सुधर जाएगा, साधुओं के संग करेगा तो सुधर जाएगा। तो एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर, और अभी जो साधु के रूप में घूम रहे हैं, अभी देखना चाहिए एवरी साधु हैज ए एक पास्ट, एक ऐसा उनका भूतकाल है, उन्होंने ऐसा वो कौन सा है, बहुत सारे पाप कार्य किए होंगे, हमको देखना नहीं चाहिए कि क्या किया पाप, अभी क्या है देखना चाहिए। साधुओं का वर्तमान, भौतिकवादियों का भविष्य के ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान होना चाहिए। तो ये निष्कर्ष हम इस अध्याय से प्राप्त कर सकते हैं, या इस श्लोक से प्राप्त कर सकते हैं। इसके विषय में कोई प्रश्न वगैरह तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन। हाँ, अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न है कि आत्मतत्व और भगवत तत्व अलग है क्या, ज्ञान का अर्थ क्या है, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, व्हाट इज नॉलेज, चेत अचेत ईश्वर है, तीनों के बारे में ज्ञान, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत्र ज्ञानम मतम्मम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्रज्ञ कितने प्रकार के हैं, दो है, एक है शरीर का संबंधित हमारा क्षेत्रज्ञ अणु क्षेत्रज्ञ, दूसरा विभु क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम, तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम, आत्मा और शरीर के बीच में अंतर को जानना आत्म तत्व कहा जाता है, आत्मा और परमात्मा के बीच में संबंध को जानना उसमें भगवत तत्व कहा जाता है। तो आत्मा और परमात्मा के बीच में संबंध का ज्ञान दत्तात्रेय ने वर्णन नहीं किया, यह भी तो हल्का सा निराकार वाद को उन्होंने प्रस्तुत किया। दत्तात्रेय संप्रदाय जो है उसको मायावाद भी नहीं कह सकते, उसको निराकार भी नहीं कह सकते, एक स्पेशल शिक्षा है, जो स्पेशल शिक्षा जो शुद्ध वैष्णव फिलॉसफी के साथ मेलजोल नहीं करता है, इसलिए हम उनको पूजा नहीं करते, वी डोंट वर्शिप। ठीक है, ऐसा अवधूत दिखेगा तो हम कैसे पहचान पाएंगे? तो इससे कहा जाता है कि हम अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं पहचान सकते, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो अगर कोई हमारे वैष्णव आचार्य वो स्वीकार करते कोई अवधूत को, तो हम स्वीकार करेंगे। जैसे इसलिए व्यासदेव ने अपने सिद्धांत, अपना वेदांत सूत्र ये व्यासपीठ को स्थापना किया। ये जो व्यासपीठ, व्यासपीठ होता है यानी आचार्यों की संप्रदाय की परंपरा जो है वो इसलिए रहता है ताकि ये सही अवधूत कौन है और ऐसे बहुत सारे नकली है वो कौन है, उनको उनकी दोनों के बीच में व्यत्यास को जानने के लिए ये व्यास संप्रदाय। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर के समय में बहुत सारे अवधूत थे, परमहंस के स्तर में अवधूत थे, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ने किसी को स्वीकार नहीं किया, केवल गौर किशोर दास बाबा जी को स्वीकार किया। और गौर किशोर दास बाबा जी भी इसी प्रकार कभी हंसते थे, कभी उधर रो पड़ते थे, कभी गौरा 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 करके उधर भागते थे, कभी वो सन्नास बाजू बाजू में था सबके बीच में बैठ के वो सन्नास में बैठ के वो जपा करते थे। ये सब चीजें अवधूत के लक्षण, रचना ठाकुर ने उनको पहचान पाया। तो इसलिए आचार्य जिन अवधूतों को स्वीकार किए उनको हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनके पास दिव्य शक्ति होता है जिसके द्वारा वो पहचान सकते हैं। इसलिए खास करके आप जाएंगे वृंदावन में, वो राधा कुंड में आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे बाबा जी रहते हैं, लेकिन उनको हम दूर से प्रणाम करेंगे, पता नहीं हम कौन कौन किस कौन किसके स्तर में, सबके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे आचार्य जिनको विशिष्ट रूप में चुने हैं उनके पास जाके हम बैठ के सुन सकते, कोई तकलीफ नहीं उसको, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन हमारी बुद्धि के द्वारा पहचानने के लिए जाएंगे तो अजीब होगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। बच्चन ठाकुर उनके गौर किशोर दास बाबाजी महाराज से जब हुआ ध्यान उनके शरीर छोड़े, तो समय बच्चन ठाकुर जाके उस शरीर को लेने के लिए जा रहे थे, बहुत सारे लोगों ने परमहंस तथाकथित राव जयराग ने कहा कि नहीं नहीं आप सन्यासी हो, हम बाबा जी हैं, हम परमहंस के स्तर में हैं, हम तो बहुत एडवांस है, ये जो है बाबा जी के संप्रदाय में आते हैं ये शरीर हमको दो। विश्वनाथ ठाकुर ने कहा कि मेरे जो गुरु है वो एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, आप में से कितने लोग नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, सब लोग सर झुका दिए, ठीक है, आप में से कितने लोग है जो एक साल से ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो, कोई आप में से कितने लोग हैं, ठीक है एक महीने से, आप में से कितने लोग हैं एक दिन तक ब्रह्मचर्य पालन किए बताओ, कोई आगे नहीं है। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या किया, वो गौर किशोर दास बाबा जी शरीर को लेके जा रहे, तो आजू बाजू में बाबा जी लोगों ने कहा नहीं, गौर किशोर दास बाबा जी जो है उनका इच्छा थी कि उनके मृत्यु के बाद उनका शरीर को नवद्वीप के रास्ते में घसीट के लेके जाएगा, नवद्वीप का धूल से उनका पूरा लेपन होना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि ये उनकी इच्छा इसलिए क्योंकि वो नवद्वीप से इतना प्रेम करते हैं, लेकिन मैं उनका शिष्य हूँ तो इसलिए मेरे गुरु का जो शरीर है वो मेरे लिए आराधनीय है, कोई आराधनीय वस्तु को मैं इस प्रकार वो मैं कर नहीं सकता, वैसे उन्होंने जवाब दिया। तो आचार्य लोगों ने जिस प्रकार किया है हमको उस प्रकार करना है। अगर मान लो कोई आपके आचार्य है कोई अवधूत को आदर दे रहे तो उनको हम आदर देंगे, अगर कोई आचार्य स्वीकार नहीं किया है, अगर वो अवधूत जैसे जी रहे तो हम उनको आदर देके छोड़ देंगे, उनके साथ कोई संग नहीं करेगा, विल नॉट डू दैट। और कोई एनी मोर क्वेश्चन? वर्णाश्रम आदि भी ही कार्य यही है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ना ब्राह्मण है ना क्षत्रिय ना वैश्य ना शूद्र, वर्णाश्रम धर्म के कुछ नियम होते हैं कि नहीं? तो ये अवधूत जो है ये चारों वर्ण चारों आश्रम के कोई नियम पालन नहीं करते, कभी सन्यास के बारे में, कभी गृहस्थ करेंगे, कभी गृहस्थ करेंगे, कभी उसका करेंगे, क्या उसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता। वो दैट मीन्स वन हु इज वन हुज एक्टिविटीज कैन नॉट बी जज। अवधूत है, कभी भी कुछ भी बोल देते, सही नहीं। कभी कभी हमारे आश्रम में, ब्रह्मचार्य आश्रम में कभी कुछ लोगों का ऐसा व्यवहार है तो वो नहीं, अवधूत है। कभी कुछ भी कह सकते, यू कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम। लेकिन हृदय में आत्म साक्षात्कार रहता, दे आर कंप्लीटली कंप्लीटली सेल्फ रियलाइज। नहीं, ट्रांसलेशन में क्या लिखा है अब ध्यान से पढ़ेंगे, मैं भी थोड़ा सा ध्यान लगाया इसके ट्रांसलेशन के ऊपर कि नाइदर बाय द सेंटली पर्सन्स एक्टिविटीज, बाय द बॉडली फीचर्स, बाय हिज वर्ड्स, नॉन सिम्टम्स ऑफ वर्णाश्रम कुड पीपल अंडरस्टैंड। यानी ये चार कार्यों के द्वारा लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि वो वही व्यक्ति था जो हमारे साथ में जी रहा था, यानी पहचान नहीं पा रहे थे, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ये बात है, ऐसा नहीं कि पहचान पा रहे थे। ये दत्तात्रेय ऐसा माना जाता है, सह्याद्री उधर ही उनका प्राकृतिक सब कुछ हुआ, उनके इधर ही घूमते थे। लेकिन जब प्रहलाद महाराज ने जाके पूछा उन लोगों से कौन है या ये कहाँ रहते, वो कुछ पहचान नहीं पा रहे थे, पहचान नहीं दे पा रहे थे उनका, ये अर्थ है। यानी ये ऐसा हिंदी में थोड़ा सा अनुवाद में थोड़ा सा अलग सा लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में इस प्रकार स्पष्ट है, नाइदर दे कुड अंडरस्टैंड वेदर ही वॉज द सेम पर्सन दे हैड नोन। क्या यही व्यक्ति है क्या, पहचान नहीं पा रहे थे उनको, करती है कि उनको कोई पहचान नहीं था इतना हद तक कि ये क्या हमको ये पहचान करे क्या, वो भी नहीं मालूम था उनको। ठीक है, संतराश्रम भागवतम थी शिल प्रभुपाद की चाहिए।